ओम शांति। सभी प्रेम से बोलो ओम शांति। ओम शांति। और इतनी प्रेम से और ऊंची आवाज से बोलो जो जानकी दादी तक ओम शांति की आवाज पहुंची। एक बार ओम शांति। वर्तमान समय हम सबकी एक ही शुभेच्छा रहती है कि हमारी जीवन यात्रा सफल हो, सत्यता, पवित्रता और रूहानियत के अलौकिक झलक और फलक लिए हुए हो और स्वच्छ दर्पण की न्यायी हो, ये शुभेच्छा रहती है। बोलो है ये शुभेच्छा, हाथ खड़ा करो जिनकी ये शुभेच्छा है। अब आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि हमारी ये शुभेच्छा कैसे पूर्ण हो। आज का विषय एकांत, एकता और एकाग्रता है। थोड़ा विचार करेंगे तो उस संपूर्णता की ओर जाने के लिए या स्वच्छ दर्पण बनने के लिए इन तीनों का समावेश होना परम आवश्यक है। तीनों कौन? एकांत, एकता और एकाग्रता। इन तीनों का आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है। जहां पर इन तीनों का वास होता है वहां सुख, शांति और शक्तियों की अनुभूति होती है। एकाग्रता एक बहुत महान शक्ति है। मुझे तो ऐसा लगता है इस संसार की सब शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ शक्ति एकाग्रता है। एकाग्रता ही सफलता की चाबी है। एकाग्रता ही हमें उस परम शक्ति परमात्मा या अपने प्राण प्यारे बाप दादा के नजदीक लाती है और अनेक प्रकार की प्राप्तियों की अनुभूति कराती है। इस महान शक्ति के अंदर जितना जितना हम गहराई के अंदर छाते जाते हैं, एकाग्र चित, एकाग्र वृत्ति हम बनते जाते हैं, उतना ही हमारे अंदर बहुत बहुत शक्तियों का जो सुषिप्त अवस्था में हमारे अंदर पड़ी है उनका जागरण होता है। हम अपने आप को एक सशक्त लीडर की तरह अनुभव करने लगते हैं। आप देखेंगे संसार के अंदर जब भी कोई नई खोज होती है, नया आविष्कार होता है, चाहे दुनियावी रीति से चाहे आध्यात्मिक रीति से, उन दोनों आविष्कारों के अंदर एकाग्रता की परम आवश्यकता है। आप देखेंगे वैज्ञानिक लोग भी किसी नई खोज को खोजने के लिए पहले एकांत में चले जाते हैं, फिर एकांत में जाते जाते एकाग्रता को धारण करते हुए वो अनेक प्रकार की इन्वेंशन जो करना चाहते हैं वो करते हैं। और आज हमने देखा कि वैज्ञानिकों ने सारी दुनिया को एक गोल्डन गांव का रूप दे दिया है। हम एक स्थान पर बैठे हुए समस्त विश्व का चक्कर लगा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक शक्ति जो साइलेंस शक्ति की आधारशिला है, एकाग्रता की आधारशिला है, उस आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक शक्ति के अंदर भी यही है कि जितना हम आध्यात्मिकता की पुट लिए हुए और एकाग्रता को, एकांत और एकाग्रता को अपने जीवन के अंदर सच्ची धारणा बना लेते हैं, तो हम जैसा चाहे, जिस प्रकार का चाहे, उस प्रकार से अपनी मनोस्थिति को बना सकते हैं। और दूर बैठे हुए भी हम अनेक अनेक आत्माओं की मनोवृत्तियों को बदल सकते हैं। इस आधार से, यही एकाग्रता की शक्ति के आधार से। एकाग्रता का भावार्थ क्या है? एकाग्रता किसको कहा जाता है? एकाग्रता एक समय पर एक संकल्प में स्थित हो जाना, उसका नाम है एकाग्रता। इस एक समय पर एक ही संकल्प में लगातार अपने आप को स्थित करके ऊंच शक्तियों की अनुभूति करना या परमात्मा मिलन का अनुभव करना, इसका नाम है एकाग्रता। ये बहुत शक्तिशाली स्थिति है। जब इस स्थिति के अंदर एक सच्चा योगी स्थित होता है, तो वो इस संसार की वस्तु, व्यक्ति, वैभव सबसे ऊपर उठ जाता है, तेरे मेरे के बहान से भी ऊपर उठ जाता है और स्थूल वातावरण से भी ऊपर उठ जाता है। और उसको एक ही एक बात बुद्धि में समाई रहती है कि तू मेरा है, मैं तेरी हूं। किस शक्ति के आधार से हुआ? एकांत और एकाग्रता के आधार से। ऐसी अनुभूतियां जीवन के अंदर बहुत बार अनुभव की है, और जब व्यक्ति को इस प्रकार की अनुभूतियां होने लगती है, तो जो आज प्राण बाप दादा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे एक सेकंड में अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ, एक सेकंड के अंदर देह और देह की दुनिया से बड़े दूर चले जाओ, एक सेकंड में अपनी बीज रूप स्थिति में अपने आप को स्थित कर लो, तो वो तभी हो सकता है, उसका अनुभव तभी हो सकता है जब हम बीच बीच में समय निकाल करके एकांतवास करते करते एकाग्र चित, एकाग्र वृत्तियों में, एकाग्रता में अपने आप को स्थित करेंगे। एकाग्रता से हमें बहुत सूल और सूक्ष्म अनेक प्रकार के अनुभव होने लगते हैं, और परमात्मा पिता के अनेकानेक कर्तव्यों के, अनेकानेक गुणों के, अनेकानेक शक्तियों की अनुभूति होने लगती है। ऐसा मैं अपने अनुभव के आधार से आप सबको बताना चाहती हूं कि एकाग्रता की शक्ति बहुत महान है। अब उस एकाग्रता की शक्ति को अपने जीवन में धारण करने के लिए हमें अंतर्मुखी और एकांतवासी होना बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम अंतर्मुखता में नहीं जाते, अंदर ही अपना आपका स्वाध्याय, स्वचिंतन, स्व का निरीक्षण नहीं करते हैं, तो हमें ना अपने आप की मनोस्थिति का पता चलता, ना हम एक ऐसी ऊंच मनोबल को प्राप्त कर सकते हैं जो हम जैसा चाहे वैसा हम अपने आप को पाए। आप सब जानते हैं हमारे इसका जीता जागता मिसाल हमारी यज्ञ की जगत माता, जिनको हम बड़े प्यार से जगत अपनी मां, जगत जननी के रूप में मानते हैं। उस मामा के जीवन में भी नजदीक से जाकर के देखा तो वो अपनी उज्जवल श्रेष्ठ और महान स्थिति को बनाने के लिए, एक के अंत में खोने के लिए, वो बीच बीच में अपना टाइम निकाल करके रात रात जागरण करके अपनी मनोस्थिति को इतना उज्जवल और श्रेष्ठ बना लेती जो एक समय पर एक ही संकल्प में स्थित हो जाती। क्योंकि जब एक समय पर एक संकल्प में व्यक्ति स्थित हो जाता है तो उसके अंदर अपार शक्तियों का वास होने लगता है। हमने बहुत नजदीक से मातेश्वरी जी को देखा, उनके जीवन में कार्य करने की बहुत क्षमता थी और बहुत सुचारू रूप से वो कार्य करती थी और उनका जीवन कछुए के समान था। आप देखें, ये संसार में एक मिसाल दिया जाता है कि जो कछुआ होता है, जब उसको अपना कोई निजी कार्य होता है, अपने बाल बच्चों को देखना होता है, तो अपने पंखों को फैला लेता है। जब उसका कार्य पूरा हो जाता है तो वो अपने पंखों को ऐसे समेट कर बैठ जाता है जैसे कि कुछ नहीं है, पत्थर की नाई है। ठीक इसी प्रकार अपनी प्यारी मां हमेशा ही कार्य करने के लिए अपने कर्म इंद्रियों, अपने मन और बुद्धि को यूज करती थी, स्वतः प्रदान तरीके से यूज करती थी, और यूज करने के बाद फिर वो अपने आप को ऐसा समेट लेती और एक की याद में, एक के अंत में खो जाती और अपनी चित्त वृत्तियों को ऐसा शांत, सुदृढ़ और शीतल बना लेती। मामा के जीवन में हमने देखा चंद्रमा के समान शीतलता थी, और कहा भी जाता है योगी बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझाए और की देखे अपना रंग। तो हमने देखा उस महान विभूति के अंदर इतनी शीतलता, इतनी एकाग्रता, इतनी कर्म इंद्रियों में एकदम शीतलता थी, शांति थी, और उनके संकल्पों में इतनी श्रेष्ठता थी, इतनी उज्जवल थे संकल्प, जो वो चलते प्राणी के संकल्पों विकल्पों को कैसे रोक लेती, जिसका जीता जागता मिसाल हमने अमृतसर के अंदर देखा कि एक बार मम्मा अमृतसर के अंदर आई हुई थी और नीचे किसी बहन ने ऐसा कुछ शब्द बोल दिया जिसके कारण, क्योंकि नए नए अभी चले थे संसार के अंदर, कभी कभी कोई शब्द ऐसे निकल जाते हैं जब बहुत ओवर नशा चढ़ जाता है, तो बहुत झगड़ा शुरू हो गया। बहुत ज्यादा झगड़ा था और मम्मा ऊपर से देख रही थी और लोग उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कहते हम आपकी मातेश्वरी जी से मिलना चाहते हैं। बहनों के अंदर ये था कि मातेश्वरी जी नहीं मिल सकती, परंतु उनका एक ही जिद था कि हमको मातेश्वरी जी से मिलना है। फिर जब देखा कि ये बहुत उग्र होते जा रहे हैं तो मम्मा ने कहा जो व्यक्ति ज्यादा बोल रहे हैं उनको ऊपर ले आओ। और जैसे ही वो मम्मा के सामने गए, मम्मा की पवित्र दृष्टि, मम्मा के सतोप्रधान साकाश ने उनको एक सेकंड के अंदर ऐसा शांत कर दिया। उनको देखते ही सभी हाथ जोड़ करके बोलने लगे, माता जी हमको माफ कर देना, हमने कुछ अनुचित बोल अनुचित व्यवहार कर दिया, उसके लिए क्षमा देना, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि जीवन में इस ऊंच स्थिति की हम सबको जरूरत है। अब इस ऊंच और महान स्थिति और मनोबल को हम तभी बढ़ा सकते हैं जैसे मम्मा ने बीच बीच में अपना समय निकाल करके अपने आप को एक के हवाले कर दिया और एक से जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वसमर्थ है, जो सर्वज्ञ है, जो सर्व विभूतियों का मालिक है, उनके साथ ऐसा सच्चा संबंध जोड़ लिया जो आज उनके जीवन में इतनी शक्तियों का प्रसार और प्रवाह आ गया, जो दृष्टि पड़ते ही सृष्टि बदल गई। तो मेरे कहने का भाव ये है, एकाग्रता में बहुत बल है, बहुत। आप देखेंगे अगर आपने गीता पढ़ी हो तो गीता की समाप्ति भी एकाग्रता से हुई, जहां एकाग्र वृत्ति हुई नष्ट मोह हुआ समृद्धि लब्धा हो गई, वहां गीता समाप्त हो गई। तो सारे ज्ञान का सार एक ही है, जीवन को अगर श्रेष्ठ और महान बनाना है तो एकाग्रता को लाने के लिए एकांतवास करना बहुत बहुत जरूरी है। इसके लिए अभ्यास के अंदर बहुत दृढ़ता होनी चाहिए। हम लक्ष्य तो रखते हैं कि हम ऐसी ऊंच स्थिति का अनुभव करें, परंतु हम दृढ़ संकल्पी होकर के नहीं बैठते और फिर इधर उधर की छोटी छोटी परिस्थितियां आती है, छोटे छोटे कारण बन जाते हैं, हमारा ध्यान उस तरफ चला जाता है। परंतु जिसका ये लक्ष्य है कि मुझे एकाग्र चित्त बनना है, एकाग्रता को अपने जीवन में लाना ही है, तो वो अपना समय उन परिस्थितियों में उन विघ्नों में नहीं लगाता या इधर उधर की बातों में समय और एनर्जी को वेस्ट नहीं करता। वो अपना समय अपनी एनर्जी एक ही कि मुझे कर्मातीत बनना है, सर्व प्रकार के कर्मबंधनों से न्यारा और प्यारा रहना है और सारे संसार को स्वच्छ दर्पण बनकर के दिखाना है। तो जिसका ये ऊंच लक्ष्य रहता है उसका ध्यान छोटी छोटी बातों में नहीं जाता। ठीक इसी प्रकार मैंने बाबा के जीवन में भी ये सब कुछ अनुभव किया। बाबा भी हमेशा अनेक शक्तियों में, अनेक प्रकार के अलौकिक रंग में सदा रंगे ही रहते थे। सदा उस ईश्वरीय शक्ति को, ईश्वर पिता को उन्होंने अपना सच्चा साथी और सारथी ऐसा बना लिया और इतना निश्चय बुद्धि होकर के सर्व संबंधों की अनुभूतियां बाबा उनसे करते थे, जिसके कारण प्राण बाबा के सामने कोई कम बातें नहीं आई होगी। बहुत सारी बातें उनके सामने भी आई होगी, बहुत सारी परिस्थितियां भी उनके सामने आए, बहुत सारे उतार चढ़ाव भी उनके सामने आए, परंतु बाबा ने निश्चय के आधार, अटल निश्चय के आधार से और बीच बीच में अपने प्रीतम के साथ रो रुहान करते हुए स्वच्छ उनके शुद्ध प्रेरणाओं को, शुद्ध बातों को लाइन क्लियर होने के कारण कैच करते हुए हम सबके सामने एक ऐसे उज्जवल उदाहरण बन गए जो आज भी मैं डंके के जोर से बोलती हूं, आज भी संस्था को अगर चला रहे हैं तो मम्मा बाबा ही चला रहे हैं। उनका त्याग, उनका तप, उनका एकांतवास, उनके संकल्पों की दृढ़ता, उनका समर्पणता, उनका सफल जीवन इस बात का प्रतीक है। और जहां एकांत है वहां एकाग्रता आएगी, और जहां एकाग्रता है वहां एकता आएगी। आज इस संस्था को एकता के सूत्र में बांध करके चलना, सभी भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कारों वाली आत्माओं को साथ लेकर के चलना, ये इतना साधारण काम नहीं है। एक बहुत बड़ी अनुभूति है, बहुत बड़ा बाबा का उज्जवल जीवन है, अनुशासन है, और उन्होंने जो हम सब के लिए कार्य प्रणाली बनाई, उन्होंने जो हम सब के लिए विधि विधान बनाए, एक स्वर्णिम संसार की राह पर चलाने के लिए हम सब के अंदर सत्व प्रधानता की नींव, शुद्ध संकल्पों की नींव डाली, उसका ही ये जीता जागता मिसाल है। नहीं तो आप देखेंगे कोई भी संस्था हो, कितना भी महान लक्ष्य को लेकर के वो चलती है, उसके फर्स्ट स्टेप में तो बहुत संगठन दिखाई देता है, सेकंड में थोड़ा कम, थर्ड फेज में और कम, फोर्थ फेज में और कम हो जाता है, परंतु आज बाबा को 91 वर्ष अव्यक्त हुए भी हो गए, मातेश्वरी जी को उससे भी ज्यादा साल हो गए, 55 साल से भी ऊपर हो गया, परंतु उन्होंने अपने जीवन की धारणाओं से एकांतवास करते करते प्रभु को, उस ज्ञान सूर्य परमात्मा को अपने ऊपर इतना रिझा लिया और इतना सशक्त जीवन बना लिया जिससे उनके पास कोई भी बुराई, कोई भी कमजोरी भटकने का नाम नहीं लेती। जैसे कहा जाता है साइंस ने इस बात को प्रूफ किया कि सूर्य के अंदर बहुत तेज है और सूर्य की जो सूर्य अपनी पूर्ण किरणों में होता है, पूर्ण रूप में होता है, तो उनके सामने एक लेंस रख दो। जब सूर्य की किरणें उस लेंस के द्वारा एकाग्र होकर किसी कागज पर पड़ती है तो उस कागज को छला देती है, ऐसा है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा पिता को ज्ञान सूरज कहा जाता है। उस ज्ञान सूर्य परमात्मा पिता के साथ जिन आत्माओं का सच्चा संबंध छूट जाता है, उस संबंध के जुड़ने से उनके अंदर इतनी अपार शक्तियां आ जाती हैं जो अपनी जन्म जमांतर के विकारों को बस भी भूत कर देती है। यही आज प्राण बाप दादा का, अव्यक्त बाप दादा का हम बच्चों के लिए आदेश और संदेश है। वैसे भी कहा जाता है, शास्त्रों में गायन है, शिव शक्तियों के अंदर उनकी दृष्टि और वृत्तियों में इतनी महान पवित्रता, इतनी महान शक्ति होती थी और हाथों में एकाग्रता होती थी, दृष्टि में एकाग्रता होती, जो उस एकाग्रता और वाणी में भी वो जोहर तेज होता जो उनकी वाणी वरदानी बन जाती और दृष्टि परिवर्तन वाली हो जाती और हाथ तरफ की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले आशीष वाले होते। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, हम वही कल पहले वाली शक्तियां हैं, है शक्तियां, पर आज हम वो शक्तियां शिव शक्तियां बैठ करके अपने आप से पूछे कि हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारी वाणी, हमारे हाथ में वो एकाग्रता की शक्ति आ गई जिस एकाग्रता की शक्ति के द्वारा हम स्वर्णिम संसार लाना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हम सबको सॉल्व करना जरूरी है। बाबा बार बार हम बच्चों से यही चाहते हैं, बच्चे अंतर्मुक्ता की कुटिया में बैठकर अपने आप के दर्शन करो कि मैं किस स्टेज में हूं, मेरा मन, मेरा वचन, मेरे कर्म, मेरे संस्कारों का शुद्धिकरण हो गया, या मैं उस एक के अंत में खो गई, एक का अंत मैंने पूरी तरह से पा लिया। अगर एक का अंत पा लिया तो समझो जैसे मीरा के मुख से एक ही शब्द निकलता, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ऐसे ही हम सभी ब्रह्मा कुमार और कुमारियों के मुख से ये शब्द, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, हमारे सामने जानकी दादी जी एक जीता जागता मिसाल है। वो मिसाल आज ऐसे नहीं बनी क्योंकि मैं 1955 से उनको जानती हूं, वो मेरी गुरु है, मैं उनको हमेशा अपना गुरु मानती हूं ना। और मैंने देखा उनको एक ही लगन है, एक ही धुन है, एक ही संकल्प है कि मैं शिव बाबा की हूं, मेरा उसके सिवाय, मेरा वही परिवार है, वही संसार है, वही सहारा है। तो उनकी आंख संसार की ना किसी वस्तु, ना किसी व्यक्ति, ना किसी वैभव में जाती है, जिसके कारण आज वो अपनी उज्जवल स्टेज को पहुंच गई है। दादी जी बीच बीच में अपनी एकाग्र शक्ति को केंद्रित करने के लिए, बढ़ाने के लिए एकांतवास लेती है। मैं लंदन गई हुई थी तो मैंने देखा दादी जी के कमरे के आगे एक प्लेट लगी है, साइलेंस प्लीज। दादी जी कहाँ हैं? दादी जी अब 4 दिन नहीं बाहर आएंगी, वो साइलेंस में रहे। वो अपने संकल्पों को सिद्ध करने के लिए बहुत, क्योंकि उनको एक ही संकल्प सदा रहता कि संसार का कोई कोना न रह जाए जिसमें मेरे बाबा का नाम, मेरे बाबा का झंडा बुलंद ना हो। तो उस बुलंदियों तक पहुंचने के लिए वो बीच बीच में साइलेंस में चली जाती और अपनी शक्तियों को रिजर्व करके अपने पास श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी और पुण्य का खाता और एकाग्रता की शक्ति को रिजर्व करती, इकट्ठा करती। उस संचित धन से वह दूसरों को शुद्ध संकल्पों का प्रवाह प्रवाहित करती, जिसकी आज बाबा हम सबसे चाहते हैं, बच्चे तुम दूसरों को साकाश दो, साकाश दो, साकाश दो। तो दादी हमारे सामने आज 104 वर्ष की दादी, दादी जी का बर्थडे मनाया जा रहा था और एक साल के अंदर 72,000 किलोमीटर दादी ने यात्रा की, भिन्न भिन्न देशों में जा करके, भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से मिल करके। तो जब हमारी ही दादी है वो पुरुषार्थ करके एकांतवास लेते लेते, एकाग्रता को धारण करते हुए अपने जीवन के अंदर इतनी शक्तियों को संचित कर सकती है, तो क्या हम सबको उसको फॉलो नहीं करना चाहिए? मैं समझती हूं कि कई कहते हैं हमने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, मामा को नहीं देखा, परंतु उनके द्वारा बनाए हुए श्रेष्ठ जनों को तो देखा, श्रेष्ठ दादियों को तो देखा है ना। दादी प्रकाश मणि जी को देखे, दादी गुलजार जी को देखे, दादी जानकी जी को देखे, दादी चंद्रमणि जी को देखे, जो हमारे पूर्वज होकर के गए हैं, उन सब में महान शक्तियां आई और उन्होंने हम जैसे लोगों को अपना साथी बनाकर, सशक्त बनाकर संसार के सेवक बना दिया है ना। तो आज प्राण बाप दादा भी हम बच्चों से यही चाहते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है? एकाग्रता की शक्ति को केंद्र, एकाग्रता कैसे आए, उसके केंद्र बिंदु क्या है, कहां से आएगी वो एकाग्रता? मांगने से नहीं आएगी, उसके लिए कुछ करना होगा। सबसे पहले हमारा अमृत वेला बहुत बहुत उज्जवल होना चाहिए। अमृत वेले के साथ साथ जो हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की नियम और मर्यादाएं शुरू से बनी हुई है, जिसने उनको बांध के रखा है और संगठन को मजबूत करके रखा हुआ है, वो ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं के अनुकूल हमारा जीवन होना चाहिए। तीसरी बात, हर बहन और भाई को स्वाध्याय, स्वचिंतन, स्व का निरीक्षण, स्व का दर्शन करने के लिए समय को बीच बीच में निकालना चाहिए। आप देखेंगे बाबा के पास, हमने देखा इतनी, ब्रह्मा बाबा के पास इतनी महान शक्तियां थी। हम लोग बहुत क्वेश्चन लेके कई बार कुछ कुछ बातें समझ बुद्धि में आती तो हम सोचते आज बाबा से मुलाकात करेंगे और हम बड़े चिट्ठे बनाकर बाबा के सामने लेके जाते और टाइम लेकर के जाते। बाबा में दो शक्तियां जो एकाग्रता से आती है, निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति। दो शक्तियां, परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति इतनी प्रबल थी जो बाबा के सामने बैठते ही, बाबा की नजर पड़ते ही, हाँ बच्चे क्या बात है, एक घंटे की बात को एक मिनट में समाप्त करके बच्चे को खुश करके और बच्चा वाह वाह करते नाचता हुआ बाहर निकल जाता और ऐसा लगता कि संतुष्ट होकर के जा रहा है। तो वो संतुष्टता तब बीज पहले बाबा ने अपने अंदर डाला होगा अच्छी तरह से, तभी तो हुआ। वो एकाग्रता का बीज पड़ा होगा तभी तो एक सेकंड में सारे सवाल खत्म और बाबा खुश करते हुए बच्चों को ऐसे भेज देता। हमने बाबा को बहुत नजदीक से देखा। मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली आत्मा मानती हूं कि हमारे को कई बार बाबा के साथ भोजन करने का भी मौका मिला। जब हम बाबा के साथ भोजन करने बैठते हैं तो बाबा भोजन करते 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 कहीं गायब हो जाता और हम सामने बैठे हुए थाली में हाथ है बाबा की शक्ल देखते कि अभी ये कहां की यात्रा पर निकल गए हैं, कहां चले गए। और थोड़ी देर के बाद फिर बाबा नीचे आता और मुस्कुराता हुआ संपन्नता की स्थिति में, वो जो बाबा का स्वरूप होता बहुत ही आकर्षणीय और बहुत ही निर्विकार स्वरूप होता और उसको देखते ही लगता था कि ये चमकीली ड्रेस वाला फरिश्ता कहां से घूम करके आया है और हमारे को संदेश दे रहा है तू भी ऐसी चमकीली ड्रेस पहन ले। अब वो चमकीली ड्रेस, वो फरिश्ताई ड्रेस हम कैसे कब पहनेंगे, जब हम अंतर्मुक्ता की कुटिया में बैठ बैठ करके एकांत वास करते हुए स्वाध्याय, स्वचिंतन, समर्थ चिंतन करते करते उसका स्वरूप बन जाएंगे और एकाग्रता को अपने जीवन में ले आएंगे, तब हमारी मनोस्थिति इतनी ऊंची होगी और हम बाबा के संकल्पों को साकार कर सकेंगे। तो मैं बता के आई कि जहां एकांत है, एकाग्रता है, वहां एकता उसके पीछे पीछे भागी हुई चली आती है। क्यों? एकाग्रता में एकता समाई हुई है। एकता कब आती है? जब निस्वार्थ भावनाएं होती हैं। अगर हम कोई स्वार्थ रख करके कुछ भी कार्य करते हैं तो ना एकाग्रता आएगी ना एकता आएगी। तो हमें इन तीनों को एकांत, एकाग्रता और एकता, एकता में हम सबके मुख से एक ही बात निकलती है, हम एक हैं, एक के हैं, एक ही घर से आए हैं, एक ही होकर के एक ही संसार बसाना है जिसका नाम है स्वर्णिम संसार। एकता के झंडे को लेकर हमें संसार की सारी विकट परिस्थितियों को चेंज करना है, क्योंकि आप देखेंगे संसार के अंदर अनेकानेक प्रकार की भटकना है, अनेकानेक प्रकार की हलचल है। अब वो अनेकानेक प्रकार की भटकना और हलचल को समाप्त करने वाले कौन? जो एकता के सूत्र में, संगठन के सूत्र में बंधे हुए हैं, वो है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। संसार की भटकन को हमें बदलना है, है? संसार को एक राह पर लाना है, और संसार के अंदर जो भी विकट परिस्थितियां हैं वो हमें अपनी साइलेंस की शक्ति के द्वारा, अपने श्रेष्ठ जीवन की धारणाओं के द्वारा, अपनी मनस्थिति के द्वारा ही संसार को बदलना है। क्योंकि एकाग्रता दूर बैठे हुए व्यक्ति की मनोस्थितियों को बदल सकती है, ईश्वरीय शक्तियों की अनुभूति करा सकती है। हमने अपने जीवन में देखा सेवा के अंदर जिन आत्मा को हम वाणी से नहीं बदल सकते, उन आत्माओं को या तो दृष्टि से बदलेंगे या संकल्प की शक्ति, एकाग्र वृत्तियों से उस आत्मा को दृष्टि देते देते ऐसा परिवर्तन हो जाएगी जो ना उम्मीदवार से उम्मीदवार बन जाएगी। तो आज तो सारे ना उम्मीदवार है, और ना उम्मीदवारों को उम्मीदवार बनाना है मन, वचन, कर्म और संस्कारों के शुद्धिकरण के द्वारा। एकाग्रता हमारे अंदर निर्मलता भी लाती है, नमित भाव पैदा करती है, निश्चल वृत्तियां बनाती है और निर्माण भावना भी पैदा करती है। और संसार को बदलने का एकमात्र तरीका यही है कि जब हमारा मन निश्चल हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, स्वभाव सरल हो जाएगा, धैर्यता और गंभीरता हमारे जीवन के अंदर आ जाएगी, तो फिर हम ऐसे सशक्त बाबा के बच्चे बन जाएंगे जो बाबा की मनोकामनाओं को, संसार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो मेरी आप सबके प्रति, अपने प्रति पहले यही शुभ भावना और शुभ कामना है कि जो प्राण बाप दादा ने हम बच्चों को कार्य दिया हुआ है वो एकांतवास, एकाग्रता को अपने जीवन में लाते हुए, एक के अंत में खोते हुए, संसार के सब पदार्थ वस्तुओं को भूलते हुए एक एक में जैसे दादी के मुख से निकलता मैं कौन मेरा कौन, तो मैं कौन और मेरा कौन एक ही है, मैं उसकी हूं वो मेरा है। कल मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, जगरूप भाई से पूछा गया कि आपको सजनी रूप का अनुभव है परमात्मा के साथ कि वो हमारा साजन है, तो बड़ा अच्छा आंसर उन्होंने दिया है ना। ठीक इसी तरह से अपने सर्व संबंधों को उस एक के साथ निभाने का दृढ़ संकल्प करें, क्योंकि दृढ़ संकल्प का तेज सूरज के तेज से भर करके है। सूरज का तेज एक अनेकानेक जीव जंतुओं को जीवन प्रदान करता है, अनेक प्रकार के कीड़े मकौड़ों को नष्ट करता है, भस्म करता है। ठीक इसी तरह से हम सब भी अगर अपने आप पे ये दृढ़ संकल्प करें कि मुझे स्वयं का परिवर्तन कर, एकता के सूत्र में बांध कर, एकांतवासी होकर एकाग्र वृत्तियों को धारण करते हुए अपने संपूर्णता की मंजिल को पाते हुए अपने जीवन की धारणा से, अपने आचरण से, कहते हैं आचरण ही उपदेश है, जीवन ही संदेश है, धर्म ही धारणा है। तो अपने आचरण से, अपने जीवन की धारणाओं से संदेश देते हुए सबको यही बताना है कि हम एक हैं, हम एक के हैं, और एक होकर के ही अब घर वापस जाकर फिर नए संसार की रचना करनी है, जहां पर हरियाली और खुशहाली का ही बोलबाला हो। ऐसी मेरी आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना और शुभकामना है। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, जब हम एक संकल्प कर लेते हैं और दृढ़ता उसमें ले आते हैं और साथ में समय का सदुपयोग करते हैं, धैर्यता और गंभीरता को अपना साथी बना लेते हैं और स्वाध्याय और स्वचिंतन को अपने साथ मनन चिंतन करना अच्छी प्रकार से सीख जाते हैं और बाबा से रूहान करना सीख जाते हैं, तो फिर कोई बात मुश्किल नहीं। मुझे इस पर एक छोटा सा प्रसंग याद आता है। एक सन्यासी महात्मा जी एक सड़क के किनारे पर बैठ करके ये बोला करते, जो सोचोगे सो बन जाओगे। लोग समझते ये तो पागल सा व्यक्ति है, ये कैसे हो सकता है जो हम सोचेंगे सो बन जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। पर एक युवक को थोड़ा ये संकल्प आया कि थोड़ा इसके नजदीक जा करके तो देखे ना, तो वो उसके नजदीक गया, कहा महाराज आप क्या बोलते रहते हैं, जो सोचोगे सो बन जाएंगे। तो कहने लगे, हाँ मैं ठीक ही तो बोल रहा हूँ, गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, ठीक बोल रहा हूँ। बच्चे तुम भी जो सोच लो सो बन जाओगे। वो बच्चे के पास, उस युवक के पास कुछ पैसा नहीं था, परंतु उसने सोच लिया कि मुझे हीरो का व्यापारी बनना है। तो सोचने के बाद वो जैसे उनके सामने बोल खड़ा होता है, तो उन्होंने कहा, ये युवक तुमने सोच लिया क्या बनना है? तो कहने लगा, हाँ महाराज मुझे तो हीरो का व्यापारी बनना है। तो कहा, तुम बन जाओगे। अब वो सोचने लगा, मेरे पास पैसा तो कुछ है नहीं और हीरो का व्यापारी कैसे बनूंगा। कहा, तुम अपना राइट हैंड दिखाओ। राइट हैंड में लिख दिया समय, का लेफ्ट हैंड दिखाओ, उस पर लिख दिया धैर्य, अच्छा तुम हीरो का व्यापारी बन जाओगे। अब वो बच्चा युवक सोचने लगा, है तो बहुत मुश्किल बात, पर फिर सोचने के बाद उसने एक हीरो के व्यापारी के यहां नौकरी करनी शुरू कर दी। अब मालिक की कई बार उसको डांट डपट, कई प्रकार ऐसा सलूक भी मिलता, तिरस्कार भी मिलता, तो भी वो समय का सदुपयोग करता और धैर्यता को अपने साथ रखता। धैर्यता को रखते हुए समय का सदुपयोग करते 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 एक दिन वो हीरो का व्यापारी बन गया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देवता कुल की आत्माएं हैं। बाबा ने हम बच्चों को बहुत उज्जवल स्मृतियां जागृत की हुई हैं, और हम सब चाहते हैं कि हम श्रेष्ठ जन्म के अधिकारी, श्रेष्ठ पद के अधिकारी बने, और स्वर्णिम संसार की चाबी हमारे हाथ में हो। वो हो सकती है जब हम समय और धैर्यता और गंभीरता का साथ रखेंगे, और सबसे बड़ा साथ जो सर्व प्रकार की आशीर्वाद देने वाला है, सर्व प्रकार की शक्तियां प्रदान करने वाला बाप है, उस बाप के साथ सच्चा संबंध जोड़ के चलेंगे तो हमारे संकल्प जरूर साकार होंगे, ऐसा मुझे निश्चय है और आप सबके लिए विश्वास है। क्योंकि परमात्मा पिता की याद में रहते रहते, श्रेष्ठ कर्म करते करते हम सब की बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाती, तो बुद्धि की लाइन क्लियर होने से हर चीज, क्योंकि उसमें परखने और निर्णय करने की शक्ति आ जाती, और परखने और निर्णय की शक्ति के आधार से हम प्रत्येक व्यक्ति को परखते हुए उनको अपना साथी सहयोगी बना करके चलेंगे, तो मंजिले कहीं दूर रही वो हमारे नजदीक ही नजदीक है, ऐसा मैं समझती हूँ। ओम शांति शांति शांति।
आदम पंछी प्यार। Bye-bye.